हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। गजाला जी को रिया और अकरम का वहाँ रहना बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो रिया को सताने से बाज नहीं आती थी। जैसे ही रिया फल की प्लेट लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगी, गजाला जी ने उसके हाथ से प्लेट छीन कर फेंक दी। वैसे तो गजाला जी रिया को रोज ही ताना मारती थीं, पर आज उन्होंने उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में कहा, तुम अपनी औनाद यहीं पैदा करोगी ताकि उसे भी फोकट का खाना खिला सको। ये सुनकर रिया गुस्से से आंख बबूला हो उठी और गजाला जी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इससे गजाला जी और ज्यादा भड़क गईं और उन्होंने रिया को मारने के लिए हाथ उठा लिया, पर इससे पहले कि वो रिया को मार पाती, किसी ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखने पर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पीछे कोई और नहीं बल्कि स्वयं अबीर सिंह राठौग खड़े थे। वो गजाला जी को कड़ी निगाहों से देखने लगे। तब तक अकरम भी वहां आ गया और रिया का हाथ पकड़कर उसे संभालने लगा। अब गजाला जी कुछ बोल नहीं पा रही थीं। वो कभी अकरम को देखती, कभी अबीर सिंह राठौड़ को। उनके शरीर में कंपन होने लगा था। तभी अबीर सिंह राठौड़ बोले, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों पर हाथ उठाने की या उन्हें किसी भी तरह से परेशान करने की? आखिर आप हैं कौन और समझते क्या हैं खुद को? अबीर ने गुस्से से तेज आवाज में कहा। गजाला जी अबीर के इस रूप को देखकर हैरान थीं, क्योंकि आज तक अबीर ने उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, बस हाँ ना में ही जवाब दिया करता था। अबीर उनसे कभी ज्यादा बात नहीं किया करता था, पर आज पहली बार गजाला जी से ऊंची आवाज में बोला था। गजाला जी अच्छी तरह जानती थीं कि अबीर सिंह राठौड़ क्या है और क्या कर सकता है। अब उन्हें अबीर से डर लगने लगा था, पर इससे पहले कि गजाला जी कुछ बोल पाती, अरहम ठाकुर वहां आ पहुंचा। उसने सारी बात समझी और स्थिति देखकर फटाफट अबीर के गले लग गया और बोला, अरे भाई आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए, आप जानते हैं हमने आपको कितना मिस किया। अबीर ने अरहम की बात सुनकर उसे हैरानी से देखा, क्योंकि जहां तक उसे याद था उन दोनों के बीच ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं थी जहां इतनी घनिष्ठता हो, और आज अचानक अरहम अबीर के गले लग रहा था। वहीं गजाला जी भी अबीर को देख रही थीं। तभी अबीर ने अरहम को खुद से दूर किया और फिर गजाला जी की ओर मुंह करके बोला, मैंने आपसे कुछ पूछा था, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों के साथ बदतमीजी करने की, और आप यहाँ क्यों आई हैं और साथ में अपने इस बेटे को भी ले आई हैं? आप यहाँ क्या करना चाहती हैं? तभी गजाला जी अपनी बेइज्जती होते देख खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो अबीर बेटा? आज तुम्हारे लिए ये पराये लोग अपने हो गए हैं और तुम्हारी अपनी माँ, चाहे मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही क्यों ना हूँ, लेकिन माँ तो हूँ ना मैं तुम्हारी, और तुमने मुझे ही पराया कर दिया इन पराये लोगों के लिए। गजाला जी ने अकरम की ओर इशारा करते हुए कहा। गजाला जी की बेतुकी बातें सुनकर अबीर सिंह राठौड़ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माँ तुम? अबीर गजाला जी की ओर देखते हुए बोला, आप किस एंगल से माँ लगती हैं? जिन बच्चों को आपने जन्म दिया, पाला पोसा, आप दौलत के लिए उन्हें लात मारकर किसी और अमीर आदमी के साथ देश छोड़कर भाग आईं, और आप खुद को माँ कहती हैं? आप वो औरत हैं जिसने मेरे बाप को फंसाने के साथ साथ मेरी माँ की भी जान ले ली। आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? मेरा नाम अबीर सिंह राठौड़ है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन कब क्या कर सकता है। मैंने आपको अभी तक जिंदा केवल इसीलिए रखा है क्योंकि ये मेरे बाप की आखिरी इच्छा थी। सिर्फ अपने बाप की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने आपको अभी तक जिंदा रखा है, और शुक्र मानाओ मैंने आपको कैद में नहीं डलवाया, क्योंकि मैं चाहूँ तो आपको जेल में भी बंद करवा सकता हूँ, वो भी ताउम्र। जैसे ही अबीर ने गजाला जी को साफ साफ कहा, उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि अबीर जो कुछ कह रहा था वो 100% सच था। गजाला जी की ही साजिश थी अबीर की माँ को रास्ते से हटाने की। उसने अपने पति यानी अबीर के बाप को अपने हुस्न के जाल में पूरी तरह फंसा लिया था, और उनके चक्कर में जो भी वो उनसे कहती थी वो करते रहते थे। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उन्होंने अपनी बीवी को बिना पूछे इंसुलिन देना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो शुगर की मरीज थीं, तो उन्हें जैसे ही डबल डोज में इंसुलिन दिया जाता वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थीं। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे, और जिस दिन उन्हें इंसुलिन का हैवी डोज दिया गया उसी दिन उनकी सांसें थम गई थीं। ये सब कुछ गजाला जी ने ही करवाया था। सही मायने में कहा जाए तो अबीर की माँ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गजाला ही थी, क्योंकि वो पूरी जायदाद पर अकेले राज करना चाहती थी। लेकिन वक्त रहते अबीर की बाप को उनकी असलियत पता चल गई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जायदाद अपने बेटे अबीर सिंह राठौड़ के नाम कर दी थी और गजाला जी को एक छोटा सा घर गिफ्ट कर दिया था कि जब तक वो जिंदा रहेंगी वो वहाँ रहेंगी, और अबीर से वादा ले लिया था कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा, उसे जिंदा रखेगा, क्योंकि ये औरत उनके भरोसे अपना घर, बच्चे, परिवार सब छोड़कर आई है। अगर मैं इस औरत को यहाँ पर लाकर बेघर कर देता और सड़क पर मरने के लिए छोड़ देता तो ऊपर उसे दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। इसी डर से अबीर राठौड़ के पिता ने अबीर को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने गजाला जी का सच अबीर को बता दिया था। अब अपनी पोल खुलते देख गजाला जी का मुंह लटक गया और उसने अपना सर झुका लिया। तभी अबीर ने अरहम के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू अपनी माँ को लेकर यहाँ क्यों आया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, 6 महीने तुम्हें बता दिया है ना अकरम भाई ने। 6 महीने में से 2 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तो अपनी माँ के उस छोटे से घर में 4 महीने और काट, और फिर जिससे तुम मिलना चाहते हो वो तुझे उस दिन जरूर मिलेगी, समझा तू? इसीलिए 4 महीने और इंतजार कर। और तू उसे इंडिया ले जाना चाहता है ना, तो डोंट वरी, तुझे उसे इंडिया ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इंडिया जाएगी, समझा तू? अब अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, अरहम ठाकुर, अपनी माँ को लो और निकल यहाँ से, और तेरा दिल चाहे तो 4 महीने इस देश में गुजार ले, वरना अपने देश में जाकर भी गुजार सकता है, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ तेरी बहन का तलाक हो गया है। जैसे ही अरहम और गजाला जी ने सुना, दोनों के मुँह खुले के खुले रह गए। अरहम अबीर की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, लेकिन आप तो यहाँ रहते हैं, आपको कैसे पता चला? तब अबीर ने अपनी मूछों पर स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहा, मेरा नाम अबीर सिंह राठौड़ है, और जो लोग मेरी सबसे प्यारी चीज को छीनने की कोशिश करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी 7 पुश्तों तक की जानकारी रखता हूँ, अपने पास समझे तुम? अब ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, अभी तुम बच्चे हो, अपनी माँ को लो, निकलो यहाँ से, अबीर ने सीधे सीधे कहा। गजाला जी की आंखें भर आई थीं, क्योंकि उनकी इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई थी, वो भी उनके अपने सगे बेटे अरहम ठाकुर के सामने। अरहम ने एक नज़र अपनी माँ की ओर देखा, उनकी झुकी हुई गर्दन उसे सब कुछ बता चुकी थी। वो जल्दी ही उन्हें लिए बिना वहाँ से लंबे लंबे कदम भरता हुआ निकल गया, और गजाला जी एक बार रिया, अकरम और अबीर की ओर देखते हुए आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद अबीर उठा और रिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ रिया जी, आपसे जो कुछ भी हुआ मैं पूरी कोशिश करूँगा आइंदा कभी ऐसा न हो। और रही बात इस घर की, ये घर आप लोगों का भी है, क्योंकि मैंने इस घर के 50% शेयर आपके और आपके बच्चे के नाम कर दिए हैं। जैसे ही अकरम और रिया ने ये सुना, उन दोनों के भी मुंह खुले के खुले रह गए। तब रिया ने अबीर से कहा, आप क्या कह रहे हैं, हमें घर की या किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके और ज़ोया के लिए रह रहे हैं। तब अबीर ने उसे कहा, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी अपना सेटअप है, बिज़नेस है, घर है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं, इसीलिए मैंने इस घर का 50% मालिकाना हक आपको और आपके बच्चों को दे दिया है। और डोंट वरी, मैंने अकरम भाई को कुछ नहीं दिया है, तो पूरी तरह से इस घर की मालकिन आप हैं, और आधे शेयर मैंने ज़ोया के नाम कर दिए हैं। अबीर की बातें सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और जिस घर में वो अब तक गजाला की बातें सुनकर खुद को बहुत नीचा समझने लगी थी, लेकिन आज वो घर उसे अपना लगने लगा था। अबीर ने उसे अपनेपन का एहसास करवा दिया था। खुशी के मारे रिया की आंखें भर आईं और वो अबीर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द खुशी के मारे उसके अंदर ही दबकर रह गए। तब अकरम ने अबीर से कहा, लेकिन अबीर भाई, आपको ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए।